नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हमारी वसीयत और विरासत। इसके एक खास अध्याय पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है स्थूल का सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन, सूक्ष्मीकरण। और पूज्य गुरुदेव इसे समझाते हैं युग परिवर्तन के संदर्भ में, मतलब वो जिसे युग संधि कहते हैं, एक बड़ा उथल पुथल वाला समय। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सूक्ष्मीकरण आखिर है क्या, और जब बड़े काम करने हों, दुनिया में बदलाव लाने हों, तो इसका महत्व क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ये जो युग संधि का समय है ना, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है।
हाँ,
लेकिन ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसकी तो अपनी सीमाएं है ना।
बिल्कुल,
एक दायरे में ही काम कर सकता है, कुछ ही वजन उठा सकता है। तो सवाल ये है कि जब काम इतने बड़े हों, असीम हों, तो फिर ये शरीर कैसे करेगा। यहीं पर मुझे लगता है सूक्ष्म शरीर की बात आती है।
जी हाँ, और यहाँ पूज्य गुरुदेव के अनुसार समझने वाली बात ये है कि सूक्ष्म शरीर इन शारीरिक सीमाओं से कहीं आगे है। ये बहुत व्यापक है, बहुमुखी है।
अच्छा,
कल्पना कीजिए, एक ही समय में कई जगहों पर सक्रिय होना, कई उत्तरदायित्व निभाना।
अरे वाह।
यहाँ तक कि विचारों का लेन देन भी बिना किसी भाषा की रुकावट के सीधे मस्तिष्क से या अंतर्मन तक,
मतलब टेलीपैथी जैसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। और फिर आने जाने की दूरी की कोई समस्या ही नहीं रहती।
हाँ बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव ने इसके बड़े रोचक उदाहरण भी दिए हैं ना।
जी,
जैसे वो रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण का।
हाँ हाँ, एक ही साथ कई गोपियों संग नृत्य करते दिखना।
और वो कंसवत के समय या सीता स्वयंवर के समय भी।
बिल्कुल, उनके अलग अलग रूप दिखे थे।
बिल्कुल,
कहते हैं कि उनका विराट रूप दर्शन भी वो भी इसी सूक्ष्म और कारण शरीर का ही एक तरह से आभास था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये जो क्षमता है, ये सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि बस शरीर छोड़ने के बाद अपने आप मिल गई।
अच्छा, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है।
जी नहीं, पूज्य गुरुदेव बिल्कुल साफ कहते हैं कि इसके लिए तो विशेष साधना करनी पड़ती है, गहरी तपस्या। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये सिद्ध पुरुष बनने के बाद का अगला कदम है।
सिद्ध पुरुष मतलब जिन्होंने साधना में एक स्तर पा लिया हो।
हाँ, जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति कर ली हो, उसके बाद ये आता है, और इसी से वो अणिमा महिमा जैसी योग सिद्धियां मिलती हैं।
हाँ, सुना है उनके बारे में।
जो स्थूल शरीर से तो संभव ही नहीं है, इसके लिए अपनी शक्तियों को बाहर बेकार जाने से रोकना होता है, ऊर्जा संरक्षण एक तरह से।
और पूज्य गुरुदेव ने पुराने ग्रंथों के भी हवाले दिए शायद।
जी हाँ, वो बताते हैं कि यक्ष, गंधर्व, देवर्षि ये सब सूक्ष्म शरीरधारी ही थे।
देवर्षि नारद।
हाँ, देवर्षि नारद तो जरूरत पड़ने पर कहीं भी प्रकट होकर मार्गदर्शन करते थे।
अच्छा,
और सुनने में आता है कि हिमालय में आज भी कभी कभी यात्रियों को ऐसे अनुभव होते हैं, कोई अदृश्य शक्ति मदद कर देती है।
हाँ, मैंने भी सुना ऐसा।
पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर पूज्य गुरुदेव ध्यान दिलाते हैं, एक चेतावनी है।
चेतावनी किस बारे में?
वो कहते हैं कि इन सूक्ष्म शरीर वाली सत्ताओं या जो दैवी मदद मिलती है, उसे सब कुछ कर सकने वाला नहीं मान लेना चाहिए, मतलब वो सर्व समर्थ नहीं है।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि वे हमारे कर्म फल के सिद्धांत को बदल नहीं सकते। जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही होगा।
मतलब वो रास्ता दिखा सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं।
हाँ, मार्गदर्शन, सहायता, मनोबल दे सकते हैं, पर हमारी अपनी कोशिश, जो हमारा पुरुषार्थ है, हमारी जिम्मेदारी है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।
सही बात है।
पूज्य गुरुदेव खुद अपने हिमालयवासी गुरु के सहयोग का जिक्र करते हुए बताते हैं कि मार्गदर्शन तो मिला, पर मुश्किलें भी आई, असफलताएं भी मिली,
लेकिन हौसला बना रहा, शायद दिशा मिलती रही।
बिल्कुल, दिशा सही रही और हौसला बना रहा।
और एक बात और, कुछ महान आत्माओं के जीवन के अंत में शारीरिक कष्ट का भी जिक्र आता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस या आद्य शंकराचार्य।
जी हाँ,
पूज्य गुरुदेव इसे कैसे देखते हैं?
पूज्य गुरुदेव इसे एक तरह से कर्मों का हिसाब बराबर करना मानते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेने से जो पुण्य खर्च होता है, ये उसकी भरपाई है।
अच्छा, ताकि पूरी तरह से जीवन मुक्त स्थिति बन सके, कोई पुराना हिसाब बाकी न रहे।
हाँ बिल्कुल, ताकि पिछले कर्मों का कोई बंधन न रहे, पूरी तरह मुक्ति।
समझ गया।
और अंत में पूज्य गुरुदेव इस सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया को आज के समय के लिए, जिसे वो विषम वेला कहते हैं, मतलब मुश्किल समय, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बताते हैं।
क्यों, आज क्यों जरूरी है?
उनका मानना है कि दुनिया में जो एक तरह की नकारात्मकता फैली हुई है, जो विषाक्तता है, उसे सिर्फ बाहरी कोशिशों से, मतलब स्थूल शारीरिक प्रयासों से पूरी तरह साफ करना काफी नहीं होगा। इसके लिए शक्तिशाली सूक्ष्म शरीरों के अनदेखे सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी, अदृश्य स्तर पर भी काम करना होगा।
शायद इसीलिए उन्होंने खुद भी इतनी कठोर तपस्या और एकांत साधना की।
जी बिल्कुल, ताकि दिखने वाले और न दिखने वाले दोनों जगत में संतुलन लाने में मदद कर सकें, स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये है कि सूक्ष्मीकरण एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
हाँ,
ये हमारे स्थूल शरीर की जो सीमाएं हैं उनसे आगे ले जाती है, हमें ज्यादा सक्षम, ज्यादा व्यापक बनाती है।
बिल्कुल,
और ये मिलती है खास साधना और तप से, ऐसे ही नहीं।
सही कहा।
और खासकर आज के समय में जब दुनिया में बड़े बदलाव लाने की जरूरत महसूस हो रही है, तब तो इसका महत्व और भी ज्यादा है।
जी हाँ बिल्कुल, और इस सब पर सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है।
पूछिए।
पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण को सिद्ध अवस्था के बाद का अगला कदम बताया।
हाँ?
तो क्या हम जैसे सामान्य लोग जो अभी सिद्ध अवस्था से बहुत दूर हैं, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे अनुशासन या अभ्यास अपना सकते हैं जो हमारी ऊर्जा को बचाने में मदद करें और इस तरह की ऊंची आध्यात्मिक साधनाओं के लिए एक तरह की जमीन तैयार कर सके। भले ही वो पूर्ण रूपांतरण, वो सूक्ष्मीकरण अभी बहुत दूर लगे, पर क्या कोई शुरुआती कदम हो सकते हैं? इस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।
हाँ, ये सोचने वाली बात है कि शुरुआत कहाँ से की जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है ये।